पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। क्वींसलैंड में अनिवार्य मास्क नियम बढ़े, राज्य में 186 मामले दर्ज, अधिकांश ओमिक्रॉन। भारत में तेजी से जारी है कोरोना टीकाकरण अभियान। और FFA कप के 2 क्वार्टर फाइनल मैच कोरोना के चलते रद्द। और अब खबरें विस्तार से। क्वींसलैंड में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते अनिवार्य मास्क के नियमों को बढ़ा दिया गया है। कल यानी 23 दिसंबर से राज्य में आतिथ्य सेवा, सिनेमा और थिएटर में भी मास्क पहनने अनिवार्य होंगे। प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे का कहना है कि सोमवार से अब तक राज्य में 2,57,000 लोग आ चुके हैं। सुश्री पलाशे का कहना है कि क्वींसलैंड में सुपरमार्केट, दुकानों और सार्वजनिक परिवहन में पहले ही मास्क अनिवार्य हैं और लोग इस नए नियम की जरूरत को समझेंगे।
I think it's very practical, it's very sensible. And I'm quite sure that Queenslanders will respond positively to this move as we head into Christmas and New Year.
उधर दोनों प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और मुख्य स्वास्थ्य सचिव पॉल केली का कहना है कि ये बहुत मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना परिस्थिति सुझाए गए 2,00,000 मामले प्रतिदिन की स्थिति में पहुंचे। ये अनुमानित आंकड़ा डोहर्टी इंस्टीट्यूट के उस मॉडल पर आधारित है जो इंस्टीट्यूट ने फेडरल और प्रदेश सरकारों को दिया है। इस मॉडल में बताया गया है कि अगर कड़े नियम लागू ना किए जाएं तो परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं। ये तब आता है जब कोरोना के दैनिक मामले न्यू साउथ वेल्स में 3,763 तक पहुंच गए हैं। राज्य में आज 2 मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। उधर विक्टोरिया ने आज 1,503 नए कोरोना मामले और 6 मृत्यु दर्ज की हैं। डोहर्टी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 2,00,000 प्रतिदिन मामले, ऑस्ट्रेलिया में धीमी बूस्टर खुराक योजना और ओमिक्रॉन वेरियंट के डेल्टा वेरियंट जितना ही खतरनाक होने जैसे कारणों पर भी आधारित है। 2020 में ओटलैंड्स कार दुर्घटना के शिकार हुई एक व्यक्ति की मां का कहना है कि अगर वे न्यू साउथ वेल्स के चुनावों में स्ट्रैथफील्ड से जीतती हैं तो सड़क सुरक्षा उनके केंद्र में रहेगी। ब्रिजिट साका की बेटी वेरोनिक की गत वर्ष अपने 3 चचेरे भाई बहनों एंटनी, एंजेलिना और सियना अब्दुल्ला के साथ पिछले फरवरी में एक कार हादसे में निधन हो गया था। सुश्री सैका अब न्यू साउथ वेल्स में लिबरल पार्टी की स्ट्रैथफील्ड से उपचुनावों की कैंडिडेट घोषित की गई हैं। उन्होंने SBS अरबिक 24 से बात करते हुए कहा कि इस हादसे के बाद समुदाय और परिवार से मिले सहयोग और अपनेपन ने उन्हें चुनाव लड़ने को प्रेरित किया ताकि वे दूसरे बच्चों के लिए सड़कों को सुरक्षित बना सकें।
2026 New South Wales Road Safety Plan is being shortly released. It's being signed by government. I want to work with that to try and help implement that and wherever I can affect that change in the Strathfield community. I want to do that. I want to table that in government and make it even faster.
ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और खतरों के बारे में चर्चा करें, क्योंकि कितने ही पुरुषों को यह नहीं मालूम होता कि उन्हें जेनेटिक रूप से इस कैंसर का खतरा है और इससे उनकी जान भी जा सकती है। 500 में से एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति में BRCA1 जीन म्यूटेशन होती है और 255 में से एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति में BRCA2 जीन म्यूटेशन होती है जो उन्हें ब्रेस्ट या ओवरीज के कैंसर के अधिक खतरे में डाल देते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये जीन म्यूटेशन पुरुषों में सबसे खतरनाक प्रोस्टेट कैंसर के स्वरूपों के खतरे को भी 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है। प्रोस्टेट कैंसर फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मुख्य सचिव एन सैवेज का कहना है कि पुरुषों को उनके जीवन की महिलाओं से लगातार ये याद दिलाए जाने की जरूरत है कि वे अपने स्वास्थ्य जांचें कराते रहें।
Some of the most aggressive prostate cancers are associated with BRCA1 and 2 mutations, although few men are aware of the connection. So it's really important that they understand that they could have a gene that places them at an increased risk of prostate cancer and they need to take action to make sure they detect it early.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि पूर्ण टीकाकृत अमरीकियों को इस त्योहार के मौसम में अपने परिवारों से मिलने की योजनाओं को बदलने की जरूरत नहीं है। अमरीकी सरकार जल्द ही 500 मिलियन घर पर कोरोना जांच करने वाली किटें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित अस्पतालों के लिए 1,000 सैन्य अधिकारी तैनात किए जाएंगे और नई जांच व्यवस्थाएं भी स्थापित की जाएंगी ताकि नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटा जा सके। राष्ट्रपति बाइडेन ने स्कूलों से भी आग्रह किया है कि वे स्कूल बंद ना करें, बल्कि जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए छात्रों को संगरोध में भेजें। उन्होंने व्हाइट हाउस से बात करते हुए आग्रह किया कि लोग सावधान रहें।
And I know some Americans are wondering if you can safely celebrate the holidays with your family and friends. The answer is yes, you can. If you and those you celebrate with are vaccinated, particularly if you've gotten your booster shot. If you are vaccinated and follow the precautions that we all know well, you should feel comfortable celebrating Christmas and the holidays as you planned it.
उधर जर्मनी ने घोषणा की है कि त्योहार के बाद से नए कड़े नियम लागू किए जाएंगे ताकि ओमिक्रॉन के फैलाव को रोका जा सके। इन नियमों में लॉकडाउन तो नहीं लगाए जाएंगे, पर ये पूर्ण टीका पाए व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। इनमें एक साथ अधिकतम 10 लोगों के एकत्रित होने पर, देश भर में नाइट क्लब बंदी और बड़े आयोजन जैसे खेल मैच की दर्शकों के बिना आयोजित किए जाने जैसे नियम शामिल हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का कहना है कि ये नियम 28 दिसंबर से लागू किए जाएंगे।
I can understand anyone who doesn't want to hear about the coronavirus, mutations and the new variants, but we cannot and must not turn a blind eye to this next wave. The pandemic has taken a lot out of us collectively over the past 21 months. This is why many are rightly looking forward to the festive season with their families. With due care and consideration, this is possible. Contact restrictions are now also necessary again for those who have been vaccinated and those who have recovered. Private meetings are now limited to a maximum of 10 people. This applies in particular with regards to New Year's Eve. This is no longer the time for parties and social evenings in big groups.
कोरोना बंदी के चलते भारी नुकसान उठा रहे आतिथ्य उद्योग के लिए ब्रिटानी सरकार ने $1.9 बिलियन के कर्जों की घोषणा की है। देश में कोरोना मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि क्रिसमस तक अब कोई नए नियम लागू नहीं किए जाएंगे। वहीं स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने खेल आयोजनों से दर्शकों को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही एडिनबरा में होने वाले सालाना नए साल के जलसे को भी कोरोना के बढ़ते मामलों में रद्द कर दिया गया है। एडिनबरा में संसद से बात करते हुए सुश्री स्टर्जन ने कई ऐसे नियम घोषित किए जिनसे कोरोना की रोकथाम की जा सके।
From the 27th of December, as we come out of the Christmas weekend, and at least until the end of the first week in January, when we will review this advice again, please go back to limiting your contacts as much as you possibly can. Please stay at home as much as is feasible. When you do go out, maintain physical distancing from people not in your own group. And difficult though it is, please follow this advice over New Year. Minimise hugmanay socialising as much as you can. If we all follow the advice to minimise the contact we have outside our own households, we will help limit the spread of infections.
Aur ab khabrein Bharat se. भारत में दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियानों में से एक जारी है। ताज़ा आंकड़ों को सामने रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कुल 138.89 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीकों की खुराकें वितरित की जा चुकी हैं। बीती शाम एक दिन में 51,30,949 टीके बांटे गए थे। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया गया था। इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक उन व्यक्तियों के लिए जो बीमारियों से ग्रसित हैं के लिए शुरू हुआ था। देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक सभी आयु के लोगों के लिए टीकाकरण की अनुमति दे दी थी। भारत में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2 चरणों वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुन लिया गया है। इसके लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को संसद भवन एनेक्सी में की गई थी। बैठक का एजेंडा स्मार्ट सिटीज मिशन था। इस बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ही की थी। स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार 5 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यानी प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपए प्रति शहर दिया जाएगा। राशि का मिलान राज्य शहरी या स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.94 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। FFA कप के दो क्वार्टर फाइनल मैच जिसमें मेलबर्न सिटी और मेलबर्न विक्ट्री खेलने वाले थे, अब खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव आने के बाद स्थगित कर दिए गए हैं। मेलबर्न सिटी वेलिंगटन फीनिक्स के साथ आज रात मुकाबला करने वाली थी, वहीं मेलबर्न विक्ट्री और गोल्ड कोस्ट नाइट्स आमने सामने आने वाले थे। ये दोनों ही मैच अब किसी अन्य तारीख पर खेले जाएंगे। और अंत में एक नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप ही धूप है, यहाँ अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल धूप खिली रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में हल्की बारिश की संभावना है, यहाँ अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल बरसात हो सकती है, यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तूफान की आशंका जताई जा रही है, अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।